This is an ABP Life podcast.
ट्रेन नंबर 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:55 टाइम जब एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में यह हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने 5 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया। आसान भाषा में कहें तो रेलवे के बयान के मुताबिक गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने, मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, और वही कारण, वही रीजन आज हम आपको बताएंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। यह है FYI, मैं मानसी हूँ आपके साथ। मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं,
मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं 1988 से रेलवे को देख रहा हूँ और रेलवे मिनिस्ट्री में मैं एडवाइजर भी रह चुका हूँ। तो रेलों का जहाँ तक संबंध है वो काफी पुराना है। एक रेल यात्री के तौर पर, एक मीडिया पर्सन के तौर पर काफी समय से देखता रहा हूँ।
एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें सामने आ जाती हैं?
देखिए, आपको याद होगा कि बालासोर में
जी
इसी महीने पिछले साल जो घटना घटी थी उसमें रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार 3 ट्रेनें टकरा गई थी।
जी,
और ये जब इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो रेल संरक्षा आयोग, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है, एक बिल्कुल ऑटोनोमस टाइप का ये संस्था है और ये जांच भी करती है और बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो मीडिया में काफी बातें उठती हैं और उस समय सरकारी स्तर पर, रेलवे के स्तर पर बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में चाहे आयोग की रिपोर्ट्स हों या और जो बातें हों उनकी फिर अनदेखी हो जाती है। एक क्रम बन गया है कि ठीक है, ये तो चलता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आपको याद होगा कि जब बालासोर रेल दुर्घटना हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 10 साल की एकमात्र ऐसी दुर्घटना थी जिसमें वो गए थे वहां। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने शपथ ली थी उसी समय 2014 में ही गोरखपुर के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि नहीं, रेलवे में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ठीक होंगे, ये होंगे। तो ये जो मानवीय त्रुटियां हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि सिग्नल की अनदेखी तो एक मानवीय त्रुटि है ना, क्योंकि मशीन और मनुष्य के बीच का तालमेल जो है वो किसी भी प्रणाली में काम करता है ना। तो इसमें कहीं न कहीं चीजों की अनदेखी हुई है और ये भी जो मानवीय श्रम भी जो हो रहा है ना, अभी आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, कुछ खबरें आई थी जिसमें ये था कि ड्राइवर्स कंटिन्यूअस, मतलब एक जो उनके लिए रिक्वायर्ड आवर्स है उससे ज्यादा चला रहे हैं।
अच्छा,
सबकी गर्मी में वैसे ही। तो जब भी होगा जो ड्यूटी आवर्स है वो वायलेट होंगे। मानवीय दुर्घटना, मानवीय चूक वहां होती है जहां उसकी परिस्थितियां बनती हैं, अन्यथा जब जिसको आदर्श कहा जाता है रेलवे में 8-10 घंटे की जो ड्यूटी होती है जहां, वहां चूक की गुंजाइश नहीं होती है जो है। लेकिन ये कुछ तो हुआ है जिसकी जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरी की पूरी घटना। और खास तौर पर देखिए, इसमें पैसेंजर और यात्री गाड़ी दोनों प्रभावित हुई है
जी।
और यात्री यातायात में जब भी एक कोई दुर्घटना होती है तो लोगों के दिलो दिमाग में आ जाता है कि भाई आप बात तो कर रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की और जीरो एक्सीडेंट की बात हो रही है, बट अगर बालासोर से लेकर के और ये कंचनजंगा जैसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो आदमी कैसे भरोसा करेगा कि सब कुछ फूल प्रूफ है। जी
नहीं, इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हर जगह खबरों में फिर से एक बार कवच की बात हो रही है, फिर से सब कवच के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं कि कवच
था तो काम क्यों नहीं किया, या कवच सारी ट्रेनों में क्यों नहीं है, इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
नहीं देखिए, कवच का तो अभी बीच में आपने देखा होगा, आरटीआई से भी कुछ सूचनाएं मांगी गई थी। और जो कवच है, कवच की प्रणाली का जो डेवलपमेंट किया था कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किया था। उसको बाद में कहा गया, उसका कुछ और अपग्रेडेड वर्जन आया और ये कहा गया कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही फूल प्रूफ है।
ओके।
और हम जल्दी ही इसको पूरा कायाकल्प कर देंगे, हर जगह लगा देंगे। तो अब ये देखिए कि ये अभी नहीं, ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट 2014 में आई उसमें जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं ये चौथे रेलवे मिनिस्टर
जी,
उसके पहले डीवी सदन गौड़ा साहब या सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल, इन सब ने ये कहा था कि रेलवे की जो सुरक्षा संरक्षा है वो टॉप प्रायोरिटी होगी।
ओके।
और उन्होंने भी कहा था कि टक्कर रोधी उपकरण को हम लगा देंगे, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम लगाएंगे, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगाएंगे, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, सिग्नलिंग का जो सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करेंगे। ये सारी बातें होती रही हैं
जी,
बट निश्चित तौर पर ये काम अधूरा रहा है ना। और कम से कम एक काम तो हो सकता था कि दो तरह की चीजें हैं, आप देखिए जो पूरा रेलवे का पूरा नक्शा अगर आप लेके देखेंगी तो आप पाएंगे कि 11 जो है जो अति व्यस्त मार्ग है, जो हाई डेंसिटी जो है, उसमें पूरे भारतीय रेल का 16% हिस्सा चलता है
जी।
केवल 11 जो सबसे ज्यादा घना जो सघन यातायात का मार्ग है उस पर 16% हिस्सा चलता है, और 11,000 किलोमीटर जो रेल लाइन ऐसी है जिसमें रेलवे का 41% माल परिवहन होता है। तो ये दोनों अगर मिला लेंगे आप है ना, तो रेलवे नेटवर्क का 35% पैसा हिस्सा ऐसा है जिनमें देश के 40% यात्री चलते हैं, ठीक है
जी।
और अगर 50% पर आप आ जाएंगे रेल लाइनों का तो ये 80% बोझा अकेले संभालती, यानी 50% रेल लाइन है। तो इनको सबसे पहले इसलिए टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि जो रेलवे का 25% रेल नेटवर्क है, जो रेल नेटवर्क है उस पर 100 से 150% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। यानी जहाँ 100 रेलगाड़ी आपको चलानी चाहिए वहाँ आप 150 चला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये भारी दबाव के बीच में रेलगाड़ियां चल रही हैं। और ये भी गौर करने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल पॉपुलेशन है उतना आप रोज लेके जा रहे हैं लोगों को। तो एक ऑस्ट्रेलिया आपका जो है वो रोज सफर कर रहा है तो यात्री यातायात पर जो प्राथमिकता देनी है, क्योंकि माल यातायात भी उतना ही जरूरी है क्योंकि वो पैसा कमा के दे रहा है तो रेलें चल रही। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे पहलू हैं उसमें, जो सुरक्षा में आप अनदेखी करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी आज रोज जो एवरेज है वो 13,000 से ज्यादा रेलवे की यात्री गाड़ियां हैं और 9,000 के आसपास माल गाड़ियों का संचालन होता है
जी।
तो इतना बड़ा नेटवर्क जहां है, इतना कश्मीर से कन्याकुमारी तक तरह तरह के हिस्से हैं, तरह तरह की जलवायु भी है ना, उसके बीच का जो संतुलन है उसमें कहीं न कहीं कमी आने का एक कारण ये भी है कि आपने सुना होगा कि करीब 3,00,000 वैकेंसी है रेलवे में, और उस 3,00,000 वैकेंसी में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि टेक्निकल पद हैं जिनको आपको भरना ही होगा, बगैर उसके काम नहीं चलता
जी।
तो अब जरूरी पहले तो ये है कि टेक्निकल पदों को भरा जाए
जी,
ड्राइवर गार्ड वगैरह जो ये सेफ्टी कैटेगरी के जो पद हैं उनको ड्यूटी आवर्स से ज्यादा उनका काम नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों को ध्यान रखने के अलावा। क्योंकि देखिए ये तो अभी आप है ना, यहाँ कवच लगा हो या ना लगा हो मायने नहीं रखता, क्योंकि ये मैनुअल फेल्योर है ना सीधे
जी, जी, exactly.
अगर ड्राइवर ले जाके बिगाड़ दे रहा है तो वहाँ मनुष्य और मशीन के बीच का जो तालमेल है।
नहीं नहीं, कवच का जिक्र भी मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी, सॉरी सर, बट कवच का इसलिए भी जिक्र हो रहा है कि अगर कवच लगा होता तो कहते हैं ना कि वो पहले
देखिए कवच लगा होता तो निश्चित तौर पर एक निर्धारित दूरी से पहले रेलगाड़ी रुक जाती है
जी।
ये जो गाड़ी है जाके टक्कर नहीं करती क्योंकि उसका नाम ही कवच का है। कवच नाम दिया गया है उसको, जो है बेसिकली हिंदी में जो नाम दिया गया था उसको टक्कर रोधी उपकरण था, यानी किसी भी तरह की टक्कर रोकना।
ये कितनी गाड़ियों में है, कुछ क्या अंदाजन इसका कोई डेटा है?
नहीं, इसका देखिए क्या है कि इसका डेटा तो उनको आधिकारिक तौर पर पहले करना था, लेकिन बीच में जो आंकड़े आए थे, देखिए शुरू में तो करीब ये बहुत छोटे से दायरे में, करीब 1600-1700 किलोमीटर के दायरे में लगाया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा, मैंने आप समझिए कि बहुत बड़ी प्रणाली में कवच जो लगाया गया है, लगाया जा रहा है, ये बहुत ही लिमिटेड, जिसको कहिए कि केवल 1500 किलोमीटर लगा हुआ है।
और तो शायद तो चुनिंदा ट्रेन्स में ही लगाया है।
हाँ देखिए, करीब 70,000 किलोमीटर के करीब रेलवे का है, तो और वो दोनों देखेंगे तो मतलब इतना लिमिटेड है, मतलब 15% के आसपास में लगाया हुआ है। तो कवच प्रणाली जो आप कह रही हैं, ये अगर कवच होता है यहाँ भी या बालासोर में होता तो निश्चित तौर पर ये जरूर हो सकता था कि ये रुक जाती और वहाँ जो जनहानि हुई है या जो ऐसे मैंने जो आज आलोचना हो रही रेलवे की वो नहीं होती। तो मुझे लगता है कि संभवतः, देखिए इसके पीछे के कारण और भी है जो मुझे नजर आता है
जी,
कि रेल बजट के अलग होने के बाद संसद में रेलवे पर चर्चाएं वगैरह बहुत कम हो गई
जी।
अगर ये रहा होता, रेल बजट अगर मर्ज नहीं किया होता इन्होंने, तो अब तक हर साल ये सवाल उठता कि कितना लगाया, क्यों नहीं लगाया। फिर उस समय मैं देखता था कि हर बार तैयारी के साथ आते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पहले अनमैंड लेवल क्रॉसिंग की बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी। अनमैंड लेवल क्रॉसिंग पर
जी
सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती थी, वो केवल संसद में सांसदों की जागरूकता के नाते रुकी है, क्योंकि इनको एक फेज्ड मैनर में कार्यक्रम चलाना पड़ा है और हजारों जो अनमैंड लेवल क्रॉसिंग है उसको बंद करना पड़ा है, उसकी जगह मैंड हुई है या कुछ जगह अंडरपास या अंडरपास बनाए गए हैं, उस समस्या का को समाप्त किया गया
जी।
तो इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ एक लापरवाही की गई है इस पूरे मामले में, इस नाते ये घटना हुई है जी।
जी, इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल जरूर से पूछना चाहूंगी, मोदी गवर्नमेंट में आपने क्योंकि कहा कि कई चीजें हर सरकार लाने के लिए वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वो जब जमीनी हकीकत देखी जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें, क्या कुछ हुआ है और अब क्या कुछ होना बाकी है जिसकी आवश्यकता है?
देखिए, हुआ है तो चमकाने का काम हुआ है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो रेल भवन में, आप देखेंगे रेल भवन में पुरानी जो एक पूर्वोत्तर रेलवे की एक एंटिक पीस रखी हुई थी रेल इंजन की
जी,
उसको हटा के वहाँ वंदे भारत रखा गया। तो पहले ब्लू कलर का था, अब एक भगवा कलर का वंदे भारत तक उठा है
जी।
और स्टेशनों को चमकाने में, वंदे भारत में सारा फोकस वहाँ रहा है, ठीक है ना। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, मैं आपको एक अपने सुनने वालों को एक बात बताना चाहूंगा कि जब रेल भवन का उद्घाटन हुआ उस समय जगजीवन राम जी रेलवे मंत्री थे
जी,
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे कि आप उसका उद्घाटन कर दीजिए
जी।
तो नेहरू जी ने कहा कि आप रेलवे मंत्री हो, आप उद्घाटन करो, ठीक है। तो उद्घाटन वहाँ हुआ जो आज का रेल भवन बना है बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बगल में
जी।
तो अगर वहां से देखेंगे तो रेल भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने नहीं गए, और वंदे भारत ट्रेन को रेलवे के जो अधिकारी है उन्होंने टॉप प्रायोरिटी इसलिए दे दी कि सबसे ज्यादा ट्रेनों का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने खुद किया है। तो जब भी पीएम का इंटरेस्ट होता है किसी एक चीज में, मान लीजिए वंदे भारत में, तो वंदे भारत एक अच्छी ट्रेन है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो हायर क्लास के लोगों के लिए है, वो ये जहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो गरीब लोग, सब लोग, सबसे सस्ता है अभी भी रेलवे का टिकट अगर आप देखेंगे
जी।
तो मुझे लगता है कि 2-3 काम तो तत्काल करने चाहिए थे। एक तो सीनियर सिटीजन के जो सब्सिडी थी उसको बहाल करने की जरूरत, उसको पिछले बार 2 बार से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी लिख रही है
जी,
कि आप इसको बहाल करो। दूसरी चीज है कि सेफ्टी और स्पीड, ये दोनों चीजों में, क्योंकि कुछ ट्रेनें बहुत अच्छी दिखाई पड़े और बाकी ट्रेनें भगवान भरोसे चलें, तो उससे आपका पूरा सिस्टम वो नहीं होता। 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अगर आपके उसमें चल रहे हैं रोज, तो निश्चित तौर पर यात्री यातायात के, गरीब लोगों का जो यातायात का जो लाइफ लाइन बनी हुई है भारतीय रेल, उसको मजबूत बनाने के लिए एक कमीशन बनाने की जरूरत है जो इनकी प्रायोरिटीज को तय करे, मुझे ऐसा लगता है। जी
जी, आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी अरविंद जी, वो यही कि रेल दुर्घटनाओं के डेटा के बारे में अगर हमें बताएं कि पिछले कुछ सालों में ये बढ़े हैं या कम हुए हैं।
नहीं देखिए, ऐसा है कि एक अगर आपने देखा होगा कि इधर पिछले एक 20 सालों की बात करूंगा
जी,
तो पिछले 20 सालों में दो बड़े काम हुए हैं। एक तो काम ये हुआ है कि यूपीए 1 और 2 के दौरान, मतलब लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान, एक डेडिकेटेड फंड बना था। और उस फंड के बाद वो कैसे बना था, क्योंकि उसके पहले आपको याद होगा नीतीश कुमार जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो एवरेज रोज एक रेलगाड़ी की दुर्घटना हो रही थी, एवरेज बता रहा हूँ, रोज लगभग।
जी,
ठीक है। तो उसके बाद जो जो चीजें हुई उसमें दोनों सरकारों ने, मतलब सुरेश प्रभु के पीरियड में भी, रेल मंत्री पीरियड में भी और यहाँ भी, तो ये हुआ। और अभी समस्या क्या आ रही जिसमें मतलब तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि आज चुनौती क्या है रेलवे के पास कि 100 रुपया कमाने के लिए उसको 98 रुपया खर्च करना पड़े।
जी,
तो बचा कितना, केवल 2 रुपया बचा। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे की वो 7 लाख और करीब 60,000 करोड़ रुपए की पेंडिंग प्रोजेक्ट, ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल 2021 की स्थिति में, वो अभी भी बढ़ गई क्योंकि बहुत सारी दुर्घटना, मैंने बहुत सारे मामलों में। अब समस्या क्या है सुरक्षा संरचना में कि हर साल करीब 200 सिग्नल जो है ओवर एज होते हैं।
अच्छा।
और 100 बदले जाते हैं।
ओके।
हर साल 4,500 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, वो खराब होकर बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बहुत सारे पेंडिंग पिछले रह जाते हैं।
जी।
तो जैसे 2022 की हालत में अगर आपको देखेंगे तो जो रेल, मैंने जो ट्रैक रिन्यूअल का जो काम था
जी,
वो 9,000 किलोमीटर से ज्यादा था, जिस पर 54,000 करोड़ की लागत आनी थी।
जी।
तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपने कोई भी चीज पेंडिंग कर दी तो आपका लागत बढ़ती जाएगी।
जी।
अगर आप मनुष्य के रूप में देखेंगे तो दुर्घटनाएं घटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और तोड़फोड़ से जो घटनाएं होती थी उनमें भी कमी आई है। ठीक है।
ओके।
तो रेल दुर्घटनाएं निश्चित तौर पर कमी, अगर आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो कम हुई है जो है।
ओके।
और लेकिन 2017-18 से जो घटता हुआ क्रम था 21-22 तक, वो फिर से उठान की ओर आ रहा है, ये चिंताजनक बात है।
Okay, है ना? मतलब करंटली अगर हम,
और ये बड़ी घटना हो रही है, बड़ी घटना नहीं, बड़ी घटना इस संदर्भ में हो रही है कि आप ये देखिए ना कि एक अकेले बालासोर हो गया और 10 घटनाओं के बराबर हो गया।
अच्छा, इस संदर्भ में
एक यहाँ हो गया। तो अगर बड़ी, अब आप बड़ी बड़ी ट्रेनें चला रहे हैं, इतनी सारे लोग जा रहे हैं, 22-24 कोचेज की ट्रेनें चल रही हैं आपकी, ठीक है, तो जिसमें से क्या है कि बहुत सारी नई चुनौतियां हैं, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना रेलवे को, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि मैंने जो कमीशन की बात कही, ये कमीशन बने
जी,
जो तात्कालिक प्रायोरिटीज को तय करे कि आखिर रेलवे को क्या करना है,
कि आखिर रेलवे को जरूरत किस चीज की है।
हाँ, और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए बाकायदा, एक से एक सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ये कहना चाहूंगा। जी,
थैंक यू सो मच अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर।
थैंक यू।
आखिर में आपको बता दूं, रेलवे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। सियालदा के लिए 0332350874, गुवाहाटी में 0361273162, लामडिंग जंक्शन में 0367426398, कटिहार इमरजेंसी हेल्प डेस्क 6287801805, कमर्शियल कंट्रोल 9002041952, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन 6287801758, किशनगंज 7542028020, डलखोला 8170034228, बारसोई जंक्शन 7541806358, समसी 03513265900, कटिहार 9473198029। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आज के FII में इतना ही, मैं मानसी हूँ आपके साथ।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।